पुण्य का किस रूप में प्रेम हुआ, पति पत्नी के रूप में? गोपियां जिस भाव में रंगी है उसी भाव में। इसलिए उस श्लोक में बतलाया गया, ज्ञाने प्रयास उद्पास नमंते वज्वंत सन्मुखरितां भवदीय वार्ता। अलग से इस तत्व ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। यदि ऐसी कथाएं मिले जिसको सुनने से साधु संघ में कृष्ण के प्रति अपने आप श्रद्धा रक्ति और भक्ति, इसलिए इन कथाओं के माध्यम से हम लोग के यहाँ तो वो कथाएं भी और स्वरूप को उद्बोधक जितनी प्रकार की जो शिक्षाएं हैं, जैसे जन्म धर्म इत्यादि है, भक्ति का स्तर है, कैसे साधन करना चाहिए, ये सब चीजों का हम लोग यहाँ पर वर्णन करते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता, अथवा नीच जाति होने के कारण भी वर्णक तो मलिनत्व इत्यादि युक्त। अभी एक पुस्तक देख रहा था, उसमें आया ब्राह्मण जाति तो दूसरा कोई गुरु नहीं होता, अंततः तो ब्राह्मण जन्म लेना पड़ता, और उसमें कितना सब दिया है वेदों का, यहाँ कहाँ का प्रमाण दिया है। किंतु ऐसा मूर्ख साधुओं का संग नहीं होने से ऐसा होता। व्यास जी की कौन जाति थी, जिनके शिष्य हैं सुमंत पैलर जैमिनी, ये सब बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषि लोग उनके शिष्य हैं, रोमहर्षण सूत इत्यादि ये सब हैं। सुखदेव गोस्वामी कौन सी जाति हैं,
नारद ऋषि
उनके शिष्य थे कि नहीं,
अगस्त विश्वामित्र
उनके भी सब शिष्य हैं,
कुंभ
व्यास जी के शिष्य सुखदेव विश्वामित्र सुख गोस्वामी। कृष्ण जगत गुरु है, तो ये जगत गुरु कैसे है, वो वैश्य कुल में जन्म लेकर के या क्षत्रिय कुल में,
रामचंद्र जी क्षत्रिय कुल में,
उनको जगत गुरु कभी नहीं कहा गया, क्योंकि उनको तो कहा गया है
जगत गुरु।
इसका अतिरिक्त हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, नरोत्तम ठाकुर जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, प्रभुपाद, ये सब लोग जो है कौन से जाति में आए, बलदेव विद्याभूषण इत्यादि, प्राचीन काल से अब तक, बल्कि इन वैष्णवों ने जो जाति भेद करता है
नारद जी,
पाषण जी, ये सब नहीं देखना चाहिए। समस्त शास्त्रों का अध्ययन करने वाला और वेद पारंगत निपुण सब प्रकार से जो किंतु भक्ति नहीं है उसके साथ में कोई संबंध मत रखो, और इन सबसे हीन रहने पर भी तत्व ज्ञान से पूर्ण भगवत भक्ति से पूर्ण यदि है तत्मय देयम ततो ग्राह्यम्। इसलिए नीच जाति होने के कारण ये उस भक्ति को कैसे पा गई जो कि उद्धव के लिए, नारद के लिए, ब्रह्मा जी के लिए, शंकर के लिए भी संभव पर नहीं है, कैसे मिल गया उनको? कोई ब्राह्मण गुरु का ये संग करती ये पुलिंद कन्याएं तो कैसे पहुंच गई वहां पर, कितना ऊंचा जो दूसरों के लिए संभव पर नहीं। अतः काम आप सौंदर्य अनुभव करे बोलिया मत का, इसलिए इनको कहा गया मत काम, मत माने मेरे प्रति काम, कामानुगात संबंधानुगात, संबंधानुगात से भी श्रेष्ठ है काम, या काम उनके प्रति हो गया, ये साधन के द्वारा नहीं होगा, ये तो विशेष कृपा से ही ऐसा संभव हो सकता है। मेरे लिए ही कामना करती है, काम भी है किसके लिए, मेरे लिए। अतएव ये अबलाएं जो हैं सब विषय में हीन होने पर भी पर ब्रह्म स्वरूप, नंदनंदन स्वरूप, ब्रजेंद्रनंदन, राधा कांत, गोपी कांत, राष्ट्रमण, इनके प्रति इनकी कामना हुई और उसको प्राप्त कर लिया। कब प्राप्त कर लिया आगे बतला रहे हैं, देखो देहांतर में या उसी समय, कब उन्होंने पतिभाव से प्राप्त हुई थी, नहीं पतिभाव से नहीं, जार भाव से, जहाँ पर वेद भी नेकी नेकी कह देता है, वेद भी उस चीज को नहीं पाता, उससे भी ऊपर वेद की सीमाओं का उल्लंघन कर गई। वेद में भी ऐसी बातें हैं, इसलिए जार भाव से मैंने कृष्ण के प्रति ये परकीय भाव से ये जार का तात्पर्य, इस भाव से नित्य नूतन प्रेम से जो कि संसारिक पति भाव में नहीं है, संसारिक के लिए ये निंदनीय है, किंतु कृष्ण यहाँ पर परब्रह्म ही स्वयं नायक है, वहां पर ये दोष नहीं है। इसलिए नए नए रूप में मधुर मधुर रूप में माधुरी सुखी चरम सीमा को ये प्राप्त हो गई। कौन? इंद्रिया गोपियों के संग से, डायरेक्ट संग नहीं, इनडायरेक्ट संग से, अर्थात गोपियों के संग के प्रभाव से गोपी भाव को प्राप्त हो करके उसी शरीर में या देहांतर कर रहे हैं। तो गोपी वत् प्राप्त देहांतरे तस्मिन् एव देहे वायुः, उसी शरीर से अथवा देहांतर के बाद में प्राप्त हो गए। देहांतर को भी प्राप्त हुई तो कोई बुरी बात नहीं, एक दो जन्मों की बात नहीं, करोड़ों जन्मों की बात, और दूसरे जन्म ही पा गई तो फिर क्या हुआ? ऋषि थे ना, उन्होंने पूछा नारद जी से, मैं यहाँ बहुत दिनों से तपस्या कर रहा हूँ मिली पेड़ के नीचे, प्रभु के पास में जा रहे हैं, पूछेंगे मैं कब तक भगवान का दर्शन पाऊंगा, वो मुझे कब दर्शन देंगे? नारद जी गए भगवान से पूछा, जब वो पृथ्वी लोक में उस जगह में एक साधन कर रहा है, इमली के पेड़ के नीचे बैठे एक संत, आप उनको कितने दिनों के बाद दर्शन देंगे? तो इमली के पेड़ के पत्ते जितने हैं उतने गिन करके उतने उसके जन्मों के बाद में दर्शन दूंगा। जब नारद जी आए तो बड़ी लज्जा से उधर नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा ऋषि इधर से क्यों नहीं जा रहे, उधर से भगे जा रहे हैं, प्रभु से भेंट हुई, कहा तुम्होंने ऐसे कहा, जिस इमली के पेड़ के नीचे वो साधन कर रहा उस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद में इस साधन से मिले, आनंद होकर के नाचने लगा, अब तो मेरी एक सीमा आ गई, सीमा में आ गया, पहले भी कोई सीमा ही नहीं, अंततः इमली पेड़ के पत्ते भी गिने जा सकते हैं, एक सीमा में इतने जन्मों के बाद में तो पाऊंगा, बस नाचने लगा, इसने में प्रभु आकर के उपस्थित हो गए। नारद जी ने कहा, अरे प्रभु उसको तो दर्शन पीछे देने, हमारी बात झूठी कैसे हो गई, आपने हमसे प्रतिज्ञा की इतने जन्मों के बाद में दर्शन देने और आप अभी आ गए, क्यों आ गए? कहने जिस रफ्तार से वो भजन कर रहा था उसे तो कोटि जन्मों के बाद ही था ये मिलेगा, किंतु अब ये प्रेम में तन्मय होकर के जब हमको हमारी दया को विचार करते हुए जो उत्फुल्ल होकर के उत्कंठा से नाच रहा है, अब उसे रहा नहीं गया, मैं जीत लिया। तो हम लोगों के साधन में भी ऐसी उत्कंठा रहे, ऐसा विश्वास हो, जो ऐसे बड़े दयालु हैं जो पुलिंदों पर कैसी कृपा है। अब कब आज यही तक पंचा भक्त महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में शाम को कीर्तन में बैठे, सैकड़ों भक्त महाप्रभु के साथ में कीर्तन कर रहे हैं, और जगन्नाथ जी के ब्राह्मण लोग देखा जैसे ये तो अपने से तो प्रसाद नहीं लेंगे, आज प्रसाद ले चले और इनको दें, और यदि देंगे नहीं लेंगे तो इनका अपराध होगा, महाप्रसाद की अवज्ञा की, इसे देखें जब क्या करते हैं, इनको जरूर लेना पड़ेगा, इनको खिला करके हम आएंगे और इनको भी एकादशी वर्ष भ्रष्ट करेंगे, तब हम यहाँ पर जितने आदमी ब्राह्मण लोग हैं इनकी कोई आलोचना नहीं करेगा। इसलिए थाल में भर करके तरह तरह के चीजों को लेकर के आए और उनके सामने रख दिया, आप लोग अभी प्रसाद पा लीजिए, मगर अभी हम लोग पा रहे हैं। ऐसा कर करके स्तव स्तुति आरंभ किया, घंटों स्तव किया सब भक्त मिलकर के, एक दो नहीं स्तव नहीं एक घंटों उसकी महिमा वर्णन करते रहे, भक्त लोग सुन रहे हैं। और जब वो समाप्त हुआ तो कीर्तन आरंभ किया, हरे कृष्ण अथवा हरि हरे नमः, और परिक्रमा करने लगे। करते करते ये भी 3-4 घंटा हो गया, तब तक रात खत्म हो गई। जब रात खत्म हो गई 4 बज गया तो अब चलो ठाकुर जी का दर्शन करें, उनका मंगल आरती दर्शन करके समुद्र स्नान करने लिए। तब तक समुद्र स्नान करके आए, आंधी की तैयारी किया, तब तक सूर्योदय हो गया। बस आओ सब लोगों को बैठा करके और प्रसाद सबको दे दिया, वो लोग देखते रह गए। देखो महाप्रभु जी का विचार, हम लोग महाप्रभु जी के संप्रदाय में हैं, इसलिए हम लोगों को भी अच्छे तरीके से पता लगता है कि वो साधारण एकादशी थी। और उस दिन उन्होंने प्रसाद कुछ भी नहीं लिया, इसलिए थोड़ा सा कठोर हम लोगों को होना पड़ेगा। उस एकादशी के दिन में तपस्या करनी चाहिए। आप लोगों ने सुना है रूप मंगल और धर्मंगल, बेटा कौन बाप कौन?
रूप मंगल पिता, धर्मंगल
खर्जा चाहिए। फिर देना ये सहज समझा, किंतु एकादशी तोड़ना सहज नहीं। एकादशी नष्ट हो जाएगी, भाई जैसे तुम एकादशी करो, उसकी पत्नी ने कहा, एक दूसरी पत्नी वही मोहनी दूसरी पत्नी बंधन करके बोली, प्रतिज्ञा करवा दी, हम तुमसे शादी उसी रूप में करेंगे यदि तू हमारी बात मानेगा, जिस दिन बात नहीं मानेगा हम तुमको छोड़ देंगे। वो स्त्री पर आसक्त था, दूसरी वाली थी ना, जैसे महाराज दशरथ कैकेयी पर आसक्त थे, इसी तरह से आसक्त थे। मैं हाँ तुम जब कहेगी, जो कहेगी मैं करूंगा। जब एकादशी आई बोलिए, एकादशी आपको नहीं करना होगा, अजय एकादशी तो मैं जरूर करूंगा, तो मैं चलू जाऊंगी, तो तुम अभी चली जाओ, कोई बात नहीं। एकादशी के संबंध में हमसे कोई सुलहनामा नहीं होगा, और सब बातें तुम्हारी मानूंगा। उनकी बड़ी रानी थी, उन्होंने कहा जैसे इसको दुख होगा, इसलिए बीच में सुलहनामा कराने के लिए आई। बोली जैसे देखो बहन, मैं तेरी दासी हूं, तुम जो कुछ कहेगी कहूंगी। राजा को एकादशी व्रत करने दो, उन्हें यहाँ एक सूरत में करने दूंगी, तुम दोनों मिलकर के अपने बेटे का सिर काट करके और हमको दे दो और एकादशी करो। राजा मंजूर है, राजा से राजा ने दोस्तों भक्त निकाल दो। राजा नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, हम लोग का आदत जगत तो देखे, मान लिया बात, बस एकादशी के दिन अपने बेटे को तलवार से काटने जा रहे हैं। इतने में वो सामने आई और इतने में धर्मराज आ गए, सब लोग भगवान ये सब लोग आ गए, एकादशी अपना स्वरूप धारण करके वहां पर उपस्थित हो गई। कहे नहीं नहीं काटो मत काटो मत। मुनि ने कहा कि मैं आपको मोहन करने के लिए आई थी, आपकी परीक्षा करने के लिए, सचमुच में आप लोग धन्य है, एकादशी के लिए अपना सिर भी बेटे का काट लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ उनको बैकुंठ की गति मिल गई उनको भी, और लड़के को कहा जैसे यह राज्य करेगा, राज्य होने के बाद में तब ये एक एकादशी के लिए यदि फीस देना भी पड़ा तो उसने दे दिया, अपने बेटे का शरीर फीस काट करके उसको दे दिया, ले जाओ। और हम लोग थोड़ा तकस नहीं कर सकते, केवल यही नहीं, शास्त्रों में बहुत सी बातें, एकादशी को भक्ति की जननी बदला गया, एकादशी करने से भक्ति अपने आप आ जाएगी, किंतु जैसा हम लोग जिस रूप में करेंगे इस एकादशी से नहीं, ये गारंटी है। किस एकादशी से होगा, जो करते हैं हमें सबके लिए नहीं कर रहा, बहुत से लोग एकादशी कर रहे हैं खुद प्रेम के साथ, सामर्थ्य नहीं है, अपने जीवन की रक्षा के लिए थोड़ा सा कोई चीज अनुकल्प के रूप में, अनुकल्प अनुकल्प माने क्या, अनुकल्प जीवन को धारण करने के लिए, निर्वाह करने के लिए उसको नहीं। ऐसा नहीं कि पेट भर करके एकादशी के दिन फल फराली भी तो एकदम पेट भर करके ले, इसलिए देख सुन करके एकादशी करो तब उसका फल मिलेगा, और तब उसका फल नहीं मिलता है तब शास्त्र गारंटी है, भगवान इसके लिए गए, हम करते ही नहीं कभी आई कोई एक आदमी मर रहा है, उसने काशी नहीं की, बहुत कष्ट हो रहा है, प्राण नहीं निकल रहे, बहुत मुश्किल हो गया है। तो एक आदमी हम लोगों जैसे एकादशी करने उन्होंने जाकर के ओ गैया माता अथवा हे माता जी आपको मैं एक एकादशी का फल देता हूँ, आपका सुख से प्राण निकल जाए और वैकुंठ की गति तो हो जाएगा ना? नहीं होगा। तो एकादशी एकादशी जैसी होनी चाहिए ना। तो जिसने निर्जला एकादशी के सचमुच में दिन में सोया नहीं है, भगवान का नाम कीर्तन करते करते सारी रात जगाए हैं, असमर्थ होने पर उतना ही अनुकल्प लेकर के बड़े प्रेम के साथ में भगवान का भजन करते हुए दिन और रात अहोरात्र, वो यदि एक एकादशी का फल देखो जब क्यों नहीं हो जाए, जरूर हो जाएगा, निश्चित रूप में हो जाएगा। इसलिए मर नहीं जाएंगे हम यदि हम एक दिन रात पानी नहीं पिए, या पानी एक बार दो बार जितनी जरूरत है थोड़ा थोड़ा ले लिया, थोड़ा सा अनुकल्प किया, मर नहीं हम जाए। हमने देखा है गांव में देखा है, आज से 50 वर्ष की बात कर रहे हैं, हम लोगों के घर में काफी लोग करते हैं, 3-4 आलू उबाल लिए या कंद होता नहीं शकरकंद 2-3, और वही 2-3 में सबको घर में बाहर गुड़ ले लिया थोड़ा सा, पर शकरकंद के साथ गुड़ के साथ में शकरकंद खाया और एक लोटा पानी पर लिया बस, वही चिंता। और रात में वही जय जगदीश सर नहीं वो क्या है, हाँ जय जय देवर, उन लोगों के मुख से सुनता था, बड़े बूढ़े लोग थे, जय जय देवर बड़े स्वर के साथ में लोग कीर्तन करते, गांव के सब लोग आ जाते बस कीर्तन करने लगे। अब वो समाज भी ध्वंस हो गया और सब उलट उलट हो गया, आज लोगों को आज के लिए सब शिक्षा है, हम लोग भी ऐसा ही करें, सचमुच में इन सपर्दों का पालन करें, सचमुच में हम लोग भगवान का भजन करें, हरिनाम संकीर्तन किसी को दिखलाने के लिए नहीं, हृदय के अनुराग से करें, हरि कथा श्रवण करें किसी को दिखलाने के लिए नहीं, नहीं जाने से महाराज जी या दूसरे लोग कहेंगे जैसे ये देखो तो आया नहीं, इसलिए आकर के बैठ गए, चिंता और तरह की हो रही इसलिए नहीं, हृदय के अनुराग से श्रद्धा से ये सब चीजें हों, इसी में हमारा कल्याण है और दूसरे का भी कल्याण है, इस भावना के साथ राधा कृष्ण के चरणों में हमारी एकांतिक प्रीति हो, इसलिए एकादशी का व्रत, एकादश इंद्रियों को आज हम भगवान की सेवा में इसको लगा देते, ऐसा होना चाहिए जिसको देख करके भगवान को प्रसन्नता हो, हमारे लिए आज कुछ खाया नहीं, हमारे लिए पानी नहीं पिया, मुख सूख रहा है, गला सूख रहा है और नहीं कुछ खाया, आज इसने सारा दिन रात आज हमारा स्मरण किया, कष्ट भोग किया मेरे लिए, बस भगवान प्रसन्न, इस तरह से हम लोग एकादशी करें, या कोई भी व्रत हो, जन्माष्टमी हो, महाप्रभु जी का जन्म हो, अथवा बलदेव पूर्णिमा है, या कोई भी उपवास जिसको हम करते हैं, इन सब उपवासों में ऐसा हम लोगों को चलना चाहिए, भगवत प्रेम हो इस तरह से, ये बड़ा सुकुमार लड़का है, बिना खाए कैसे रहे, अरे बेटा आजा 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 खा, ये प्रेम नहीं है क्या है, ये क्या चीज है, चाचा का मुर्गी पोसना, चाचा ने मुर्गी पोसा किस लिए, बड़ी सुंदरी मुर्गी थे, खुपला देख रहा है तो मोटी मोटी हो रही है, तो मोटी मोटी हो रही है ये किस लिए, चाचा जी को बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और जहाँ बकरी दाई ना कि ईद आई, अब देखा जी वो कहाँ गई सर, मुर्गी कहाँ है, बकरी कहाँ है, घर में मोहल्ले भर में कोई बकरी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं, ये प्यार, इसलिए आज एकादशी है, हम लोग ऐसे एकादशी करने की चेष्टा करेंगे, ये सब बेकार ना, के चुने हुए लोगों का पाठ कर रहे हैं, किंतु भूल मत जाओ इसका बेसिक प्रिंसिपल मत भूलो, हम जीव हैं, हम बधे हुए हैं माया के द्वारा, ये भी याद रखें। हमको अपनी नींव भी मजबूत रखनी है, सिद्धांत भी ठीक रखना है। यदि हम नीचे के सिद्धांतों को ठीक नहीं करेंगे तो ये सब समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए हम लोग चैतन्य चरितामृत इत्यादि जैव धर्म और सब जो छोटे छोटे ग्रंथ है उपदेशामृत इत्यादि इनका भी पठन पाठन करते हैं। विशेष करके जैव धर्म का पाठन पाठन जरूर हम लोगों को करते हैं। तब ये सब चीजें कुछ समझ में आएंगे, नहीं तो सुन रहे हैं और इसके बाद में दो दिन में भूल जाएंगे तो मजबूरी नहीं है। सप्तम की महिमा बतलाते हैं, ये कह रहे हैं। कल हमने बतलाया सबसे श्रेष्ठ संग गोपियों का, गोपियों के संग से हजारों लोग जितने भी हैं अत्यंत पवित्र लोग भी, उन सबका कल्याण हो गया और उसी भाव को पाया। किस भाव को पाया? इस जन्म में हो या दूसरे जन्मांतर में, गोपी भाव को पाया। और उन लोगों ने जैसे कृष्ण को पाया उसी रूप में उन लोगों ने सर्वोत्तम भक्ति उनको मिली। सर्वोत्तम भक्तों का संग करने से सर्वोत्तम भक्ति मिलेगी। अनर्थग्रस्त भक्तों के साथ में रहने से जैसे वो हैं वैसे ही दे सकेंगे, उसे तो ऊपर दे नहीं सकेंगे। इसलिए जहां तक हो सके शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। तो उनमें यहां पर कह रहे हैं उद्धव जी कह रहे हैं, इनको कह रहे हैं वो अपने आप गोपियों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। उद्धव जी ब्रज में आए, कृष्ण ने उनको भेजा, ये पहले बताया। कृष्ण गए, कृष्ण उनको भेजा ब्रज में आए। उद्धव जी कौन है ये समझो, जो भक्तों में ये एकदम श्रेष्ठ है, भक्त साधारण नहीं है। इसलिए पहले ये बतला रहे हैं, पहले इस श्लोक का और साधारण रूप में बतला करके आगे चर्चा कर। एता परम तो भुवि गोपो गोविंद निखला मणिमूढ़ भावा वांछन्ति यदभवभियो मुनयो वयञ्च किं ब्रह्म जन्म धीरनन्त तथारतस्य किं ब्रह्म जन्म धीरनन्त तथारतस्य एता परम संकितो भू भूकुबद्धो। इस पृथ्वी मंडल में किनका जन्म लेना सार्थक है? निश्चित रूप में गोपियों का ही जन्म लेना। इस पृथ्वी में जितने भी देहधारी हैं, देहधारियों में इस पृथ्वी में सबसे अधिक यदि किसी का जीवन सार्थक है, किसी की आंखें सार्थक हैं, किसी का कान सार्थक है, इसकी सब इंद्रिया सार्थक है, जिसका शरीर सार्थक, वो कौन है? गोपियों से। अथवा तनुभ तो भूमि, तनुभ तो भूमि मैंने पृथ्वी में जन्म में लेने वाले देहधारी जितने भी हैं उन लोगों में गोपियों का देहधारण करना ही क्यों व्याख्या करेंगे पीछे साधारण बतला रहे हैं। जो निखिल आत्माओं के भी साक्षी स्वरूप हैं, सबके हृदय में रमणी वाले हैं, अखिल आत्माओं के भी जो आत्मा है कौन है? गोविंद जी है। उनके प्रति रूढ़ भाव है। रूढ़ भाव माने, रूढ़ भाव माने उपाधि रही निरुपाधिक प्रीति है, जिसको महाभाव का और उससे भी अधिक पीछे बतलाएंगे। उस गोविंद के प्रति भी निरुपाधिक प्रीति जिनकी है, उस प्रेम को निरुपाधिक जो प्रीति उनकी है, उनके जो रूढ़ भाव हैं, रूढ़ भाव को वांछं भी जत भव भियो हृनयो, जत भव भियो जो कि संसार से भी होकर के मुक्ति चाहते हैं, संसार से कभी जन्म मरण में रहने नहीं चाहते हैं, उन मुमुक्षुओं लोगों अथवा जत भव भियो हृनयो, जो मुनि लोग भव से भीत हो गए हैं वो मुनि लोग भी, और अलग से करेंगे अर्थ तो फिर होगा मुनयो, एक पहले का अर्थ किया मुमुक्षु भव भियो, मुक्ति की इच्छा रखने वाले संसार रूपी चक्र से इसके प्रीतापों से दग्ध होकर के किसी से बचने के लिए मुक्ति चाहते हैं, अब नहीं, अब सहा नहीं जाता, इसलिए मुक्ति चाहने वाले और मुनि जो कि इससे मुक्त हो चुके हैं वो लोग मुनि, और वयं च, और वयं माने हम लोग, कौन कह रहा है, जो भगवान का संग पा करके भगवान को सब प्रकार से प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं, इनमें वयं क्यों कहा,
चार पकड़ के बोला है
वयं किस लिए कहा, हम नारद सनातन सनातन और कौन, कभी हरियाद इत्यादि, ये सब जितने भी लोग हैं, जदवंशी जितने लोग हैं, ये सब वयं हम लोग भी वांछन्ति, वांछन्ति मैंने चाहते हैं, इसको प्राण का प्रेम, निरुपाधिक प्रेम को, किंतु एक इच्छा करना और एक पाना अलग है। अभी संसार के बड़े बड़े राष्ट्र लोग खेल में जमे हुए हैं, कहीं खेल हो रहा हो और उसके लिए कितने आदमी प्राण दे रहे हैं, और सभी लोग ये इच्छा करके आए हैं खेल में फुटबॉल खेलने, हमारी टीम जीतेगी, हमारी टीम जीतेगी, वहां के राष्ट्रपति भी खेल को देखने के लिए आ रहे हैं, वहां का काम सब बंद हो गया है, और जो जीत जाते हैं तो मुंह कैसा हो जाता है, और एक से एक जीतता है ना, एकदम राष्ट्रीय महोत्सव होता है, और फिर वही जब दूसरे से हार जाती है, अब यह सिलसिला एक महीने तक चलेगा, जीतेगा तो एक ही ना, तब तो जीतेंगे नहीं, देखो इसमें संसार के लोग कितने मस्त हैं, कितने मस्त हैं, तो वो लोग चाहते हैं वांछन की जो हम लोग जीते जाए, कोई जीतेगा एक ही तो, और तो बाकी सब हारेंगे, तो वैसे ही गोपियां एकमात्र जीती हैं और बाकी सब लोग हारे हैं, केवल मात्र गोपियों को वो चीज प्राप्त है और बाकी सब लोग इच्छा कर रहे हैं, किंतु इच्छा करने से नहीं हो जाए, जब हम एक एकादशी नहीं कर पाते हैं, जब हरिनाम प्रेम के साथ में नहीं कर सकते, भगवान की जगत में साधना नहीं कर सकते हैं, तो वो तो बात, गोपियों का प्रेम मिलना बहुत कठिन है, तो इसलिए कहते हम तीनों चारों प्रकार के लोग चाहते हैं वैसा प्रेम को, किंतु नहीं पाते, कि ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा आ रहा, अरे ब्राह्मण का जन्म मिले वो ब्राह्मण जन्म से क्या लाभ, यदि अनंत, अनंत माने कृष्ण, गोविंद माने कृष्ण, इस अनंत कथा माने अनंत रूपी जो कृष्ण है उनकी कथा में जिनको रस नहीं लगता, प्रीति नहीं है, रुचि नहीं है, रस की तो बात बहुत आगे, अभी रुचि नहीं है, उनका ब्राह्मण कुल में जन्म लेना भी क्या बेकार है, अथवा ब्रह्मा जैसा चतुर्मुख होना भी क्या बात है यदि उनको अनंत कथा के में रस नहीं, गोपियों की तो बात छोड़ दो, उनकी कथाओं में जिनको रस नहीं है उनका जन्म बेकार है, कर सनातन गोस्वामी जी की टीका, ये तो साधारण, इदानी जगत पूज्यतम, जगत के पूज्यतम कौन है? भक्त। कैसे भक्त हो? यहाँ पर उन भक्तों को ये कहा गया है जिनको महाभागवत कहा जाता है। महाभागवत का लक्षण दिया गया है श्रीमद् भागवत। कौन महाभागवत है?
मुठित कथा, निश्चित कथा, सर्वभूति की जपस्वी भगवत भावना,
जो कि विश्व ब्रह्मांड की संपत्ति आने पर भी उनको तनिक खुशी नहीं होती, और ये सब संपत्ति नष्ट हो जाने पर भी जिनका कुछ चित्त खराब नहीं होता, सब समय भगवत चिंतन में डूबे रहते हैं, सब समय भगवान में जीवों को और जीवों में भगवान का दर्शन कर अपने इष्ट देव का दर्शन करते हैं, ऐसे महाभागवत जो है ये जगत पूज्यतम है। और भी सब लक्षण दिए गए हैं भागवत में। उन्होंने परम स्तुति और वंदनीय उनके